नेहेमिया अध्याय एक। नेहेमिया की प्रार्थना। यह हाकालिया के पुत्र नेहेमिया के वचन है। यह घटना 20वें वर्ष के किसलेव महीने की है, जब मैं राजधानी शूशन में था। यहूदिया से कुछ लोग मेरे एक रिश्तेदार हनानी के साथ आए। मैंने उनसे यरूशलेम के बारे में और उन यहूदियों के बारे में जानकारी पाई जो बंधुआई से बच निकले थे और जो अब जीवित थे। उन्होंने मुझे बताया, वह बचे हुए यहूदी जो बंधुआई से जीवित बच निकल आए हैं और जो इस समय उस प्रदेश में रह रहे हैं, वे बड़े दर्द में और निंदनीय अवस्था में हैं। यरूशलेम की शहरपना टूट चुकी है और उसके प्रवेश फाटक जला दिए जा चुके हैं। यह सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और मैं बहुत दिन रोता रहा। कुछ दिन तक मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा, यहावे, स्वर्ग के परमेश्वर, यह मेरी प्रार्थना है। आप जो महान हैं और आदरणीय परमेश्वर हैं, आप जो उनके प्रति अपनी वाचा और अपनी करुणा रखते हैं, जो आपके प्रति अपने प्रेम में अटल और आज्ञा पालन करते हैं, आपके सेवक की प्रार्थना की ओर आपके कान लगे रहे और आपकी आंखें खुली रहे कि आप अपने सेवक की प्रार्थना सुने। मैं आपके चरणों में आपके सेवक इज़राइल वंशजों की ओर से दिन रात यह प्रार्थना कर रहा हूँ। इज़राइलियों ने और हमने जो पाप आपके विरुद्ध किए हैं, उन्हें मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने और मेरे पिता के परिवार ने पाप किए हैं। हमारा आचरण आपके सामने बहुत ही दुष्टता से भरा रहा है। हमने आपके आदेशों का पालन नहीं किया है, ना ही हमने आपके नियमों और विधियों का पालन ही किया है, जिनका आदेश आपने अपने सेवक मोशे को दिया था। आप अपने उस आदेश को याद कीजिए जो आपने अपने सेवक मोशे को इस प्रकार दिया था, यदि तुम अविश्वासी हो जाओगे तो मैं तुम्हें देशों के बीच बिखरा दूंगा, मगर यदि तुम मेरी ओर फिरकर मेरे आदेशों का पालन करके उनका अनुसरण करोगे, तो तुम में से बिखरे हुए लोगों को यदि दूर आकाश के नीचे तक कर दिया गया है, मैं वहां से भी उस जगह पर ले आऊंगा जिस जगह को मैंने अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए सही समझा है। वे आपके ही सेवक हैं, आपकी ही प्रजा, जिन्हें आपने अपने असाधारण सामर्थ्य और बलवंत हाथ से छुड़ा लिया था। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने सेवक की विनती पर कान लगाए और उन सेवकों की प्रार्थनाओं पर जो आपका भय मानते हैं। आज अपने सेवक को सफलता देकर उसके प्रति इस व्यक्ति पर दया कीजिए। मैं इस समय राजा के लिए पिलाने वाले के पद पर था।
नेहेमिया अध्याय दो। अर्तहशिस्ता नेहेमिया को यरूशलेम भेजता है। राजा अर्तहशिस्ता के शासनकाल के 20वें वर्ष में निसान माह में, जब राजा के सामने दाखमधु रखी हुई थी, मैंने उन्हें दाखमधु परोस दी। इसके पहले उनके सामने मैं दुखी होकर कभी नहीं गया था। यह देख राजा ने मुझसे सवाल किया, जब तुम बीमार नहीं हो तो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? यह मन की उदासी के अलावा और कुछ नहीं। यह सुनकर मैं बहुत ही डर गया। मैंने राजा को उत्तर दिया, महाराज, आप सदा जीवित रहे, मेरा चेहरा क्यों न उतरे, जब वह नगर जो मेरे पुरखों की कब्रों का स्थान है उजाड़ पड़ा हुआ है और उस नगर के फाटक जल चुके हैं। तब राजा ने मुझसे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने राजा को उत्तर दिया, अगर महाराज को यह सही लगे और अगर आप अपनी सेवक से खुश हैं, तो मुझे यहूदिया जाने की अनुमति दे। वहां जिस नगर में मेरे पुरखों की कब्रें हैं, मैं उस नगर को दोबारा बनवा सकूं। तब राजा ने मुझसे पूछा, इसके लिए तुम्हें कितना समय लगेगा और तुम्हारा लौटना कब होगा? इस समय रानी भी राजा के पास बैठी थी। मैंने राजा के सामने एक समय तय करके बता दिया, सो राजा ने खुशी के साथ मुझे वहां जाने की अनुमति दे दी। मैंने राजा से विनती की, यदि यह महाराज को सही लगे, मुझे उस नदी के उस ओर के राज्यपालों के लिए महाराज द्वारा लिखे संदेश दे दिए जाए कि वे मुझे अपने राज्यों में से होकर यहूदिया तक पहुंचने की आज्ञा देते जाए। एक संदेश महाराज के बंजर भूमि के पहरेदार आसफ के लिए भी जरूरी होगा कि वह मंदिर के किले के फाटकों की कड़ियों के लिए, शहरपना और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा, लकड़ी का इंतजाम कर दे। राजा ने सभी संदेश मुझे दे दिए क्योंकि मुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई थी। जब उस नदी के पार के प्रदेशों के राज्यपालों से मेरी भेंट हुई, मैंने उन्हें राजा द्वारा लिखे गए संदेश सौंप दिए। राजा ने मेरे साथ अधिकारी, सैनिक और घुड़सवार भी भेजे थे। जब होरोनी सनबल्लत और अमोनी अधिकारी तोबिया को इस बारे में पता चला तो उन दोनों को बहुत बुरा लगा कि कोई इसराइलियों का भला चाहने वाला यहां आ पहुंचा है। नहेमिया द्वारा यरूशलेम शहर पना की जांच। यरूशलेम पहुंचकर मैं वहां 3 दिन रहा। मैं रात में उठ गया, मेरे साथ कुछ लोग भी थे। मैंने यह किसी को भी प्रकट नहीं किया कि यरूशलेम के विषय में परमेश्वर ने मेरे मन में क्या करने का विचार डाला है। मेरे साथ उस पशु के अलावा कोई भी दूसरा पशु ना था जिस पर मैं सवार था। इसलिए रात में मैं घाटी के फाटक से निकलकर अजगर कुएं और कूड़ा फाटक की दिशा में आगे बढ़ा। मैं यरूशलेम की शहरपनाह का बारीकी से जांच करता जा रहा था। शहरपनाह टूटी हुई थी और फाटक जले हुए थे। तब मैं झरने के फाटक और राजा के तालाब पर जा पहुंचा। यहां मेरे पशु के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन था, इसलिए मैं रात में ही नाले से होता हुआ शहरपनाह का बारीकी से मुआयना करता गया। तब मैंने दोबारा घाटी फाटक में से प्रवेश किया और लौट गया। अधिकारियों को यह पता ही ना चल सका कि मैं कहां गया था या यह कि मैंने क्या काम किया था। मैंने अब तक यहूदियों, पुरोहितों, प्रशासकों, अधिकारियों और बाकियों पर, जिन्हें काम में जुट जाना था, कुछ भी नहीं बताया था। तब मैंने उनसे कहा, हमारी दुर्दशा आपके सामने साफ ही है। यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक गिरे पड़े हैं। आइए हम यरूशलेम की शहरपनाह को दोबारा बनाएं कि हम दोबारा हंसी का विषय ना रह जाए। मैंने उनको यह साफ बताया कि किस तरह मुझ पर मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई और यह भी कि राजा ने मेरे लिए आश्वासन के शब्द कहे थे। यह सुन उन्होंने कहा, चलिए हम बनाने का काम शुरू करें। इस तरह वे इस अच्छे काम में लग गए। किंतु जब होरोनी सनबल्लत, अमोनी अधिकारी तोबिया और अरबी गेशेम ने यह सब सुना, वे हमारा मजाक उड़ाने लगे। घृणा से भरकर वे हमसे कहने लगे, क्या कर रहे हो यह? क्या तुम राजा के विरुद्ध विद्रोह करोगे? तब मैंने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग के परमेश्वर ही हमें इसमें सफलता देंगे, इसलिए हम उनके सेवक बनाने का काम शुरू करेंगे। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ना ही यहां आपका कोई अधिकार है, और ना यरूशलेम में आपका कोई स्मारक ही है।
नहेमिया अध्याय 3। शहरपनाह का पुनर्निर्माण में हिस्सा लेने वाले। तब महापुरोहित एलियाशीब ने अपने भाइयों को अपने साथ लिया जो पुरोहित थे, और इन्होंने भेड़ फाटक को बना दिया। उन्होंने इसे समर्पित किया और इसके पल्ले उसमें जड़ दिए। उन्होंने शहरपनाह को हम्मेया और हनानेल मीनारों तक समर्पित कर दिया। इसके पास वाले भाग को येरीखो के लोगों ने बनाया और उनके पास वाले इलाके को इमरी के पुत्र जक्कूर ने। इसके बाद सेनाया के पुत्रों ने मछली फाटक को बनाया। उन्होंने इसके पल्ले की कड़ियां डाली, द्वारों को चिटकनियों और छड़ों से लटका दिया। इनके बाद हक्कोज के पोते उरिया के पुत्र मेरे मोत ने मरम्मत का काम किया। उसके पास वाले भाग की मरम्मत का काम मेशे जाबेल के पोते बेरेखिया के बेटे मेशुल्लाम ने किया, और फिर यही काम बहना के बेटे सादोक ने भी किया। इसके अलावा उसके पास के भाग की मरम्मत तकोवा निवासियों ने की। मगर उनके नगर के बड़े लोगों ने अपने अधिकारियों को इस काम में सहायता नहीं दी। पासे के पुत्र योयादा ने और बेसाधिया के पुत्र मेशुलाम ने पुराने फाटक की मरम्मत की। इन्होंने इसकी कड़ियां डाली और इसके पल्लों को इसकी चिटकनियों और इनकी छड़ों से लटका दिया। उनके पास वाले भाग की मरम्मत गिबियोन वासी मेलाथिया और मेरोनोथी यादोन ने की, जो गिबियोन वासी और मिज़पा वासी थे। उन्होंने उस नदी के दूसरी ओर के प्रदेश के राज्यपाल के लिए उसके सिंहासन की मरम्मत भी की। उसके पास वाले भाग की मरम्मत सुनारों में से हरहैया के पुत्र उज्जियल ने की। उसके पास वाले भाग की मरम्मत सुगंध बनाने वालों में से एक ने की, जिसका नाम हन्निया था। इस प्रकार उन्होंने यरूशलेम को फैली हुई शहरपना तक पहले की तरह ला दिया। उनके पास वाली जगहों की मरम्मत ऊर के पुत्र रेफाइया ने, जो यरूशलेम के आधे क्षेत्र का अधिकारी था, की। इनके पास वाली जगहों की मरम्मत हारूमाफ के पुत्र येधाइया ने अपने घर के सामान के इलाके में की। उसके पास वाली जगहों की मरम्मत हशबनैया के पुत्र हतूश ने की। हारीम के पुत्र मालकिया और पाहात मोआब के पुत्र हसशूब ने एक दूसरे भाग की और भट्टियों के मीनारों की मरम्मत की। उसके पास वाले भाग की मरम्मत हलेहेश के पुत्र शल्लूम ने, जो यरूशलेम में के आधे क्षेत्र का अधिकारी था, अपनी पुत्रियों के साथ मिलकर की। हानून और जानोहा वासियों ने घाटी फाटक की मरम्मत की। उन्होंने इसको बनाया और इसके पल्लों को इसकी चिटकनियों और छड़ों सहित लटका दिया। उन्होंने इसके अलावा कूड़ा फाटक तक लगभग 500 मीटर शहरपना को भी बनाया। रेखाब के पुत्र मालखिया ने, जो बेत हकेरेम क्षेत्र का अधिकारी था, कूड़ा फाटक की मरम्मत की। उसने इसको बनाया और इसके पल्लों को इसकी चिटकनियों और छड़ों सहित लटका दिया। कोल होजे के पुत्र शल्लूम ने, जो मिज़पा क्षेत्र का अधिकारी था, झरना फाटक की मरम्मत की। उसने इसको बनाया, पल्लों को चिटकनियों और छड़ों सहित लटका दिया और उसके ऊपर छत भी बना दी। इसके अलावा उसने शेला के तालाब की शहरपना को भी बनाया। यह शहरपना राजा के बगीचे से लेकर उन सीढ़ियों तक बनाई गई जो दाविद के नगर से उतरती हुई आती थी। इसके बाद अजबूक के पुत्र नेहेमिया ने, जो बेत तुसूर के आधे क्षेत्र का अधिकारी था, दाविद की कब्रों की गुफा तक के बिंदु तक शहरपना की मरम्मत की और वीरों के घर और तालाबों तक की शहरपना की भी। पास वाले भाग की मरम्मत बानी के पुत्र रेहूम की देखरेख में लेवियों ने की। उसके पास वाले भाग की मरम्मत काइला के आधे क्षेत्र के अधिकारी अशाबिया ने अपने क्षेत्र में पूरी की। उसके पास वाले भाग की मरम्मत उनके भाइयों ने काइला के क्षेत्र के बचे हुए भाग के अधिकारी हेनादाद के पुत्र बववाई की निगरानी में पूरी हुई। उसके पास वाले भाग की मरम्मत येशुआ के पुत्र एजर ने की, जो मिज़पा का अधिकारी था। यह उस शस्त्रों के घर के सामने था जो चढ़ाई तक था। उसके पास वाले भाग की मरम्मत जब्बाई के पुत्र बारूक ने बहुत ही उत्साह से की, जो उस चढ़ाई से लेकर महापुरोहित एलियाशिब के घर के द्वार तक है। उसके पास वाले भाग की हक्कोज के पोते उरिया के पुत्र मेरे मोत ने और दूसरे भागों की भी मरम्मत की। यह भाग एलियाशिब के घर के द्वार से शुरू होकर उसके घर के आखिरी छोर तक था। उसके पास वाले भाग की मरम्मत घाटी के पास रहने वाले पुरोहितों ने की। उनके पास वाले भाग की मरम्मत बिन्यामीन और हसशूब ने की। उन्होंने अपने अपने घरों के सामने के भाग की मरम्मत की। उनके पास वाले भाग की मरम्मत मासेहिया के पुत्र अननिया के पोते अजरिया ने अपने घर के पास की शहरपना की मरम्मत की। उसके पास वाले भाग की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिनुई ने की। यह भाग अजरिया के घर से मोड़ तक और कोने तक फैला हुआ था। उजाई के पुत्र पलाल ने उस भाग की मरम्मत की जो मोड़ के सामने से शुरू होकर
राजमहल के ऊपरी माले के घर के गुम्मट तक है। यह पहरेदारों के आंगन के पास है। उसके पास वाले आग की मरम्मत पारोश के पुत्र पेधाइया ने की। मंदिर के उन सेवकों ने जो ओफेल में रहते थे जल फाटक के सामने के भाग तक की मरम्मत की। यह वह फाटक था जो पूर्व दिशा की ओर था, जहां पहरेदारों का गुम्मट था। इनके पास वाले भाग की मरम्मत तकोवा निवासियों ने की। यह भाग बाहर निकले हुए पहरेदारों के गुम्मट के सामने से ओफेल की शहरपना तक फैला हुआ था। पुरोहितों ने घोड़ा फाटक के ऊपर के भाग की मरम्मत की। हर एक ने अपने अपने घर के सामने के भाग की। उनके पास वाले भाग की मरम्मत इमर के पुत्र सादोक ने की, जो उसके घर के सामने का भाग था। उसके पास वाले भाग की मरम्मत शेखानिया के पुत्र शेमाया ने की, जो पूर्वी फाटक का द्वारपाल था। उसके पास वाले भाग की मरम्मत शेलेमिया के पुत्र हननिया और जलाफ के छठे पुत्र हानून ने की। उसके पास वाले भाग की मरम्मत बेरेकिया के पुत्र मेशुल्लाम ने की, जो उसके घर के सामने का भाग था। उसके पास वाले भाग का मालखिया ने, जो सुनारों में से एक था। मंदिर के सेवकों और व्यापारियों के घर से लेकर जो मुस्तर अर्थात मुआयना फाटक के सामने था, कोने के ऊपरी कमरे तक मरम्मत का काम पूरा किया। तब कोने के ऊपरी कमरे और भेड़ फाटक के बीच की शहरपना की मरम्मत सुनारों और व्यापारियों ने पूरी की।
नहेमिया अध्याय 4। पुनर्निर्माण कार्य का विरोध। जब सनबल्लत को यह मालूम हुआ कि हम शहरपना को दोबारा से बना रहे हैं, वह गुस्से से भर गया और हम यहूदियों का मजाक उड़ाने लगा। उसने अपने साथ में काम करने वालों और शमरिया के सेना अध्यक्षों के सामने कहा, यह निर्बल यहूदी कर क्या रहे हैं? क्या ये लोग अपने लिए इसको दोबारा बना लेंगे? तब क्या वे बलि चढ़ा सकेंगे? क्या वे यह काम एक ही दिन में पूरा कर सकेंगे? क्या वे पत्थर के टुकड़ों के ढेर से भवन बनाने के लायक पत्थर निकाल सकेंगे, जबकि ये आग में जल चुके हैं? अमोनी तोबिया जो उसके पास ही खड़ा था कहने लगा, अरे वे लोग जो बना रहे हैं, वह ऐसा है कि अगर एक लोमड़ी ही उस पर कूद पड़े तो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपना ढह जाएगी। हमारे परमेश्वर, सुन लीजिए कि हमारा कैसा अपमान हो रहा है। उनके द्वारा की जा रही इस निंदा को उन्हीं पर लौटा दीजिए और उन्हें बंधुआई के देश में लूट का सामान बना दीजिए। उनके पाप को क्षमा ना कीजिए, आपके सामने से उनका पाप मिटाया ना जाए, क्योंकि उन्होंने शहरपना बनाने वालों का मनोबल खत्म कर दिया है। इस तरह हमने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना उसकी आधी ऊंचाई तक पूरी हो गई, क्योंकि लोग इस काम के प्रति दृढ़ थे। इस मौके पर जब सनबल्लत, तोबिया, अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने यह सुना कि यरूशलेम की शहरपना का मरम्मत का काम तेजी पर है और सभी नाके अब बंद किए जाने लगे हैं, वे बहुत ही गुस्सा हो गए। उन सभी ने मिलकर यरूशलेम पर हमला करने का षड्यंत्र रचा कि इसके द्वारा वहां गड़बड़ी डाली जा सके। इसलिए हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनकी योजनाओं का ध्यान रखते हुए वहां दिन और रात के लिए पहरेदार ठहरा दिए। सो यहूदिया में लोग इस तरह कहने लगे, बोझ उठाने वालों का बल घट गया है, फिर भी मलबा बहुत है। हम खुद ही शहरपना बनाने के लायक नहीं रहे हैं। हमारे शत्रुओं ने आपस में विचार विमर्श किया, हम ऐसा करें हमारे उनके बीच में पहुंचने तक उन्हें यह पता ही ना चलने पाए, तब हम उनको मार के इस काम को खत्म कर देंगे। उनके आसपास के यहूदियों ने 10 बार आकर हमें इस षड्यंत्र की सूचना दी। वे लोग हर एक दिशा से आकर हम पर हमला करेंगे। इसलिए मैंने शहरपना के पीछे उन जगहों पर पहरेदार ठहरा दिए, जहां जहां ऊंचाई कम थी, जो जगह अब तक खुली पड़ी थी। मैंने परिवारों को उनकी तलवारों, भालों और धनुषों के साथ बैठा दिया। जब मुझे उनके मन में आ रहे डर का एहसास हुआ, मैंने रईसों, अधिकारियों और बाकी लोगों को यह कहा, कोई जरूरत नहीं उनसे डरने की। आप याद रखिए, सिर्फ प्रभु को जो महान और प्रतापी है, अपने भाइयों, अपने पुत्रों, अपनी पुत्रियों, अपनी पत्नियों और अपने घरों की भलाई को ध्यान में रखकर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हमारे शत्रुओं को यह मालूम हो गया कि हमें उनके षड्यंत्र का पता चल चुका है और परमेश्वर ने उनकी योजना विफल कर दी है। हम सभी शहरपना के अपने अपने काम में दोबारा लग गए। उस दिन के बाद मेरे आधे सेवक शहरपना के काम करते थे और आधे कवच पहनकर बर्छी, धनुष और ढाल लिए हुए रहते थे। यहूदा के सारे घराने को हाकिमों का समर्थन मिला हुआ था। वे सभी जो शहरपना को बनाने में लगे थे और जो सामान उठाने में लगे थे, एक हाथ से काम करते थे और दूसरे में हथियार थामे रहते थे। काम करते हुए भी हर एक मिस्त्री अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए रहता था और जिस व्यक्ति की जवाबदारी थी नरसिंगा फूकना, वह लगातार मेरे पास ही खड़ा रहता था। रईसों, अधिकारियों और दूसरे लोगों को मैंने कहा, यह काम बड़ा और फैला हुआ है और हम सभी इस शहरपना पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसलिए जब कभी तुम्हें नरसिंगे की आवाज सुनाई दे, तुम उसी दिशा में आकर हमारे पास इकट्ठा हो जाना। हमारे परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेंगे। इस प्रकार हम इस काम में लग गए। आधे लोग सुबह से लेकर तारों के दिखने तक बर्छी लिए हुए खड़े रहते थे। उस समय मैंने लोगों से यह भी कहा, हर एक व्यक्ति रात के समय अपने अपने सेवक के साथ यरूशलेम में ही रहे कि रात में तो वे पहरेदार हो जाए और दिन के समय काम करने लगे। ना तो मेरे लिए, ना मेरे संबंधियों के लिए, ना मेरे सेवकों के लिए और ना उन पहरेदारों के लिए जो मेरे साथ साथ बने रहते थे, अपने कपड़े बदलने का मौका मिल पाता था। जब हम जलाशयों के पास जाते थे तब भी हथियारों को अपने साथ रखते थे। नहेमिया अध्याय 5। नहेमिया द्वारा निर्धनों का बचाव। इसी समय लोगों और उनकी पत्नियों ने उनके यहूदी साथियों के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। इसका कारण था वे लोग जो यह कह रहे थे, हम हमारे पुत्र और हमारी पुत्रियां गिनती में बहुत है, इसलिए हमें अनाज दिया जाए कि हम उसे खाकर जिंदा रह सकें। कुछ और भी थे जो कह रहे थे, हमने अपने खेत, हमारे अंगूर के बगीचे और अपने घर गिरवी रखे हुए हैं कि इस अकाल की स्थिति में हमें अनाज तो मिल सके। इनके अलावा भी कुछ और थे जो यह कह रहे थे, हमने अपने खेतों और अंगूर के बगीचों पर राजा द्वारा ठहराया गया कर भरने के लिए कर्ज लिया हुआ है, हम भी अपने भाई बंधुओं के समान हड्डी मांस के ही हैं, हमारी संतान उनकी संतान के समान ही है। फिर भी देख लीजिए, हमें अपने पुत्र पुत्रियों को दास होने के लिए सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी कुछ पुत्रियां तो पहले ही जबरदस्ती बंधक बना ली गई है। अब हम निसहाय रह गए हैं क्योंकि हमारे खेत और अंगूर के बगीचे अब दूसरों के अधिकार में चले गए हैं। उनकी शिकायतें और बातें सुन मैं बहुत ही क्रोधित हो गया। मैंने अपने मन में सोचा, फिर ऊंचे पद अधिकारियों और शासकों से भी सलाह ली और फिर मैंने उनसे कहा, आप में से हर एक अपने ही भाई बंधु से जबरदस्ती ब्याज वसूली कर रहा है। इसलिए मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। उनसे मैंने कहा, हमने अपनी शक्ति भर उन यहूदी भाई बंधुओं को दाम देकर उन देशों से छुड़ाया है जहां उन्हें बेच दिया गया था। अब क्या आप लोग इन्हें दोबारा उन्हीं को बेचते जाएंगे कि हमें उन्हें एक बार फिर उनसे खरीदना पड़े? वे चुप रहे और अपने बचाव में कहने के लिए उनके पास कुछ भी ना था। मैंने उन्हें दोबारा चेतावनी दी, आप जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है। हमारे शत्रु देश हमारी निंदा करे, इस बात का ध्यान रखते हुए क्या यह सही नहीं कि आप अपने परमेश्वर का भय मानकर चले? खुद मैंने मेरे भाइयों ने और मेरे सेवकों ने उन्हें उधार के रूप में सिक्के और अनाज देना शुरू कर दिया है। कृपा कर हम उनसे यह जबरदस्ती भुगतान कराना बंद कर दें। कृपा कर आज ही उन्हें उनके खेत, अंगूर के बगीचे, उनके जैतून के बगीचे और उनके घर उन्हें लौटा दें। इसके अलावा उनका धन, अनाज, नई दाखमधु और तेल का सोवा भाग भी जो आप उनसे जबरदस्ती ले रहे हैं। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, हम उन्हें यह सब लौटा देंगे, उनसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं लेंगे, वही करेंगे जो आपके द्वारा सुझाया गया है। तब मैंने पुरोहितों को बुलवा लिया और उनसे यह शपथ ले ली कि वे इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही करेंगे। तब मैंने अपने बाहरी कपड़े के सामने का छोर झटकते हुए कहा, परमेश्वर ऐसे हर एक मनुष्य को उसके घर से और उसकी संपत्ति से ठीक उसी प्रकार झटक दे जो इस शपथ को पूरी ना करेगा, यहां तक कि उसे इस तरह हिला दिया जाए कि वह पूरी तरह खाली ही हो जाए। यह सुन सारी सभा कह उठी, आमीन, और उनके मुंह से यहावे की स्तुति निकली। लोगों ने अपनी शपथ के अनुसार ही किया। राजा अर्थशिष्टा के राज्यकाल के 20वें साल से 32वें साल तक 12 साल, जिस दिन से मुझे यहूदिया का राज्यपाल बनाया गया था, ना तो मैंने और ना मेरे रिश्तेदारों ने राज्यपाल के लिए तय किया गया भोजन खाया। मुझसे पहले के राज्यपालों ने तो प्रजा पर भारी बोझ लाद दिया था। वे उनसे उनका भोजन और अंगूर का रस छीन लिया करते थे, साथ ही चांदी के 40 शकेल भी। यहां तक कि उनके साथी सेवक तक प्रजा का शोषण किया करते थे। परमेश्वर का भय मानने के कारण मैं ऐसा ना कर सका। मैंने खुद को शहरपना बनाने के काम में लगा दिया। हमने कोई भी जमीन नहीं खरीदी। मेरे सभी सेवक इस काम के लिए वहां इकट्ठे हो जाते थे। मेरे भोजन की मेज पर हमारे पास के देशों से आए लोगों के अलावा 150 यहूदी और अधिकारी हुआ करते थे। मेरे हर रोज के भोजन के लिए एक बैल, 6 सबसे अच्छी भेड़े और कुछ पक्षी तैयार किए जाते थे। 10 दिन में एक बार तरह तरह की दाखमधु बड़ी मात्रा में परोसी जाती थी। इतना सब होने पर भी मैंने राज्यपाल के लिए ठहराया गया भोजन नहीं मंगवाया, क्योंकि वैसे भी प्रजा बोझ के नीचे दबी जा रही थी। मेरे परमेश्वर मेरे द्वारा इस प्रजा के हित में किए गए सभी कामों के लिए मुझे याद रखिएगा।
नहेमिया अध्याय 6। शत्रुओं की चाल। जब हमारे शत्रुओं सनबल्लत, तोबिया, अरबी गेशोम और बाकी शत्रुओं को इसका समाचार मिला कि मैंने शहरपना को दोबारा बना लिया है, कि शहरपना में अब कहीं भी कोई दरार नहीं रह गई है, यद्यपि इस समय तक फाटकों में पल्ले बैठाए नहीं गए थे, तब सनबल्लत और गेशेम ने मुझे यह संदेश भेजा, आप आइए कि हम ओनो के मैदान में चेपीरिम नामक स्थान पर भेंट करें। मगर इसके द्वारा उनका इरादा मेरा बुरा करने का ही था। तब मैंने अपने दूत उन्हें इस संदेश के साथ भेजे, मेरा यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरा यहाँ आना संभव नहीं है। यह कैसे सही हो सकता है कि मैं इसे छोड़कर आपसे भेंट करने वहां आऊं? उन्होंने 4 बार यही संदेश भेजा और मैंने भी उन्हें वही उत्तर दिया। तब सनबल्लत ने अपने सेवक द्वारा एक संदेश मेरे लिए भेजा। यह वही संदेश 5वीं बार भेजा गया था। उसके हाथ में दिया यह खुला पत्र था। पत्र में लिखा था, देश देश के लोगों में यह कहा जाने लगा है और उसकी खबर हमें गशमू से प्राप्त हुई है कि आप और यहूदी विद्रोह की योजना बना रहे हैं। शहरपना बनाना इसी योजना का भाग है। इन सूचनाओं के अनुसार आप उनको राजा बनने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए तो आपने यरूशलेम में भविष्यद्वक्ता भी ठहरा दिए हैं, जिनकी जवाबदारी होगी यह घोषणा करना, यहूदियों में अब एक राजा है। अब यही खबर राजा को भी दी ही जाएगी। इसलिए अब आप आ जाइए, हम आपस में सलाह करें,
इसके उत्तर में मैंने उसे अपना दूत इस संदेश के साथ भेजा, आपके कहने के अनुसार यहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यह सब तो खुद आपके ही दिमाग की उपज है। उन सभी का लक्ष्य हमें डराना ही था, उनका सोचना था। इससे वे डर जाएंगे और यह काम पूरा ना हो सकेगा। मगर परमेश्वर मेरी बाजुओं में ताकत दीजिए। मैं मेहताबेल के पोते देलाइया के पुत्र शेमाया के घर पर गया, जो घर से बाहर जाने में असमर्थ था। उसने प्रस्ताव रखा, हम परमेश्वर के भवन में मंदिर के अंदर ही इकट्ठा हो और मंदिर के दरवाजे बंद कर लें, क्योंकि वे आपकी हत्या के उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं और वे रात में ही आपकी हत्या करना चाह रहे हैं। किंतु मैंने इनकार किया, क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार भागना अच्छा होगा और क्या मुझ जैसे व्यक्ति के लिए मंदिर में जाकर अपना जीवन बचाना सही होगा? मैं नहीं जाऊंगा वहां। तब मुझे यह एहसास हो गया कि निश्चित ही यह परमेश्वर द्वारा भेजी गई सलाह नहीं थी। उसने तो यह भविष्यवाणी के रूप में इसलिए कहा था कि उसे तोबिया और सनबल्लत ने पैसा दिया था। शेमाया को पैसे देकर मुझे डराने के लिए काम पर रखा गया था कि मैं डरकर वही करूं जिससे मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर बैठूं, और इसकी वजह से उन्हें मुझ पर दोष लगाने का मौका मिल जाए और मैं उनके लिए निंदा का पात्र बन जाऊं। मेरे परमेश्वर, आप तोबिया और सनबल्लत के इस काम को भुला दीजिए। उनके अलावा उस स्त्री भविष्यद्वक्ता नोवादिया को भी और उन सभी भविष्यवक्ताओं को भी जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार एलूल महीने की 25वीं तारीख पर 52 दिनों में शहरपनाह की मरम्मत का काम पूरा हो गया। दीवार निर्माण का समापन। सभी शत्रुओं को यह समाचार मिल गया। हमारे सभी पास वाले देशों ने यह देख लिया। वे बहुत डर गए, क्योंकि उनके सामने यह साफ हो गया था कि यह काम हमारे परमेश्वर की सहायता ही से पूरा हो सका था। इसके अलावा उन्हीं दिनों में यहूदिया के बड़े अधिकारियों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आती जाती थी, क्योंकि यहूदिया के अनेक व्यक्ति तोबिया का पक्ष लेने की शपथ लिए हुए थे, क्योंकि वह आरा का पुत्र शेकनिया का दामाद था और उसके पुत्र येहोहानन का विवाह बेरेखिया के पुत्र मेशुल्लाम की पुत्री से हुआ था। इसके अलावा वे मेरे ही सामने उसके भले कामों की सूचना भी दे दिया करते थे। तब तोबिया ने मुझे डराने के लिए पत्र भेजना शुरू कर दिया। नहेमिया अध्याय 7। जब शहरपनाह बनाने का काम पूरा हो गया, मैंने पल्लों को ठीक जगह पर बैठा दिया और द्वारपालों, गायकों और लेवियों को चुना। मैंने अपने भाई हनानी और गढ़ के हाकिम हननिया को यरूशलेम का अधिकारी ठहरा दिया, क्योंकि हननिया विश्वास योग्य व्यक्ति था और वह परमेश्वर का बहुत भय मानने वाला व्यक्ति था। उनके लिए मेरा आदेश था, जब तक सूरज में गर्मी रहे यरूशलेम के फाटक ना खोले जाए और जब तक पहरेदार द्वार पर खड़े ही होंगे, द्वार बंद ही रखे जाए और उनमें चिटकनी लगी रहे, जो द्वारपाल ठहराए जाए वे यरूशलेम के रहने वाले ही हो, हर एक को अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर और शेष अपने घरों के सामने के द्वार पर खड़ा किए जाए। बंधुआई से लौटे हुओं की सूची। नगर फैला हुआ और बड़ा था, किंतु निवासियों की गिनती थोड़ी ही थी और अभी घर नहीं बने थे। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह विचार डाला कि रईसों, अधिकारियों और प्रजा को इकट्ठा किया जाए कि वंशावली के अनुसार उन्हें गिना जाए। मुझे वह पुस्तक भी मिल गई जिसमें उन व्यक्तियों के नाम लिखे थे जो सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे। मुझे उस पुस्तक में जो लेखा मिला वह इस प्रकार था। इस प्रदेश के वे लोग जो बाबेल के राजा नबूकदनेज़र द्वारा बंधुआई में ले जाए गए थे और जो बंधुआई से यहूदिया और यरूशलेम अपने अपने नगर को लौट आए थे, वे इस प्रकार हैं। वे जेरुबाबेल, येशुआ, नेहेमिया, अजरिया, रामिया, नहामानी, मोर्दकई, बिलशान, मिसपार, बिगवाई, नेहूम और बहना के साथ लौटे थे। कुल पिताओं के नाम के अनुसार इज़राइल देश के पुरुषों की गिनती थी। पारोश 2172, शेपाथिया 372, आरा 652। पाहात मोआब के वंशजों में से येशुआ एव योआब के वंशज 2818, एलाम 1254, जत्तू 845, जक्काई 760, बिन्नुई 648, बेबाई 628, अजगाद 2322, अदोनिकम 667, बिगवाई 2067, आदीन 655, इज़किया की ओर से अतेर 98, आशूम 328, बेजाई 324, हरीफ 112, गिबियोन 95, बेथलेहम और नेतोपाह के निवासी 188, अनाथोत के निवासी 128, बेथजमावे के निवासी 42, किरियत्यारीम के कफीरा तथा बैरोत के निवासी 743, रामा तथा गेबा के निवासी 621, मिकमाश के निवासी 122, बेथेल तथा अय के निवासी 123, अन्य नेबो के निवासी 52, अन्य एलाम के निवासी 1254, हरीम के निवासी 320, येरीखो के निवासी 345, लोद हदीद तथा ओनो के निवासी 721, सेनाह के निवासी 3930, पुरोहित येशुआ के परिवार से येधैया के वंशज 973, इम्मर के वंशज 1052, पशहूर के वंशज 1247, हारीम के वंशज 1017, लेवी होदविया के वंशजों में से कदमियेल तथा येशुआ के वंशज 74, गायक आसफ के वंशज 148, द्वारपाल निम्नलिखित वंशों से शल्लूम, अतेर, तालमोन, अक्कूब, हतीता, शेबाई 138, मंदिर सेवक निम्नलिखित वंशों से जीहा, हासूफा, तबेओत, केरोस, सिया, पदोन, लेभाना, हागाभा, शामलाई, अनान, गिधेल, गाहर, रेहाया, रेजीन, नेकोदा, गज़ाम, उज्जा, पासे, बेसाई, मियूनी, नेफिसीम, बकबूक, हकूफा, हरहूर, बाजलूत, मेहिदा, हर्षा, बारकोस, सीसरा, तेमा, निजिया, आतीफा। शलोमोन के सेवकों के वंशज इन वंशों से सोताई, असोफेरेत, पेरीदा, याला, दारकोन, गिद्धेल, शेपाथिया, अथील, ओचेरेत हजेबाइम, अमोन। मंदिर के सेवक और शलोमोन के सेवकों की कुल गिनती 392। ये व्यक्ति वे हैं जो तेल मेला, तेल हर्षा, करूब, अद्धान तथा इमर से आए तथा इनके पास अपनी वंशावली के सबूत नहीं थे कि वे इज़राइल के वंशज थे भी या नहीं। देलाहिया के वंशज, तोबिया के वंशज तथा नेकोदा के वंशज 642। पुरोहितों में होबहिया के वंशज, अक्कोज के वंशज तथा बारजिल्लई, जिसने गिलादवासी बारजिल्लई की पुत्रियों में से एक के साथ विवाह किया था और उसने उन्हीं का नाम रख लिया। इन्होंने अपने पुरखों के पंजीकरण की खोज की किंतु इन्हें सच्चाई मालूम ना हो सकी। तब इन्हें सांस्कृतिक रूप से अपवित्र माना गया तथा इन्हें पुरोहित की जवाबदारी से दूर रखा गया। अधिपति ने उन्हें आदेश दिया कि वे उस समय तक अति पवित्र भोजन ना खाए जब तक वहां कोई ऐसा पुरोहित ना हो जो उरीम तथा थुम्मीम से सलाह ना ले ले। सारी सभा की पूरी संख्या हुई 42,360। इनके अलावा 7,337 दास दासियां तथा 245 गायक गायिकाएं भी थी। उनके घोड़ों की गिनती 736 और खच्चरों की 245, ऊंटों की 435 और गधों की गिनती 620 थी। पूर्वजों के परिवारों के प्रधानों ने इस काम के लिए आर्थिक सहायता दी। राज्यपाल ने खजाने में 1,000 सोने के द्राखमा, 50 चिलमचियां और पुरोहितों के लिए ठहराए गए 530 अंग रखे दिए। पूर्वजों के परिवारों के कुछ प्रधानों ने इस काम के लिए खजाने में 20,000 सोने के द्राखमा और 2,200 चांदी मीना दिए। वह सब जो बाकी लोगों ने भेंट में दिया वह था कुल 20,000 सोने के द्राखमा, 2,000 चांदी मीना और पुरोहितों के 67 अंग रखे। अब पुरोहित, लेवी, द्वारपाल, गायक, कुछ सामान्य प्रजाजन, मंदिर के सेवक जो सभी इज़राइल वंशज ही थे, अपने अपने नगरों में रहने लगे। एज़रा द्वारा व्यवस्था विधान का पाठन। 7वें महीने तक पूरा इज़राइल अपने अपने नगर में बस चुका था। नहेमिया अध्याय 8। एक बड़ी भीड़ के रूप में पूरा इज़राइल उस चौक में इकट्ठा हो गया जो जल फाटक के सामने है। उन्होंने व्यवस्था के ज्ञानी पुरोहित एज़रा से विनती की थी कि वह यहावे द्वारा इज़राइल के लिए दी हुई मोशे की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लाए। तब पुरोहित एज़रा 7वें महीने के पहले दिन उन सभी स्त्री पुरुषों की सभा के सामने वह व्यवस्था की पुस्तक लेकर आए जो सुनकर समझ सकते थे। एज़रा सुबह से लेकर दोपहर तक जल फाटक के सामने इकट्ठा भीड़ के सामने उन स्त्री पुरुषों के लिए पढ़कर सुनाते रहे जो सुनकर समझ सकते थे। ये सभी व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान लगाए थे। एज़रा एक लकड़ी की चौकी पर खड़े हुए थे जो इसी मौके के लिए खास तौर पर बनाई गई थी। इस मौके पर उनके दाईं ओर मतीथिया, शेमा, अनाहिया, उरिया, इल्किया और मासेया खड़े हुए थे और उनके बाईं ओर थे पेदाहिया, मिशाएल, मालकिया, आशूम, हासबधाना, जकरिया और मेशुल्लाम। एज़रा ने पूरी भीड़ के देखते इस पुस्तक को खोला क्योंकि वह उस ऊंची चौकी पर खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने पुस्तक खोली पूरी भीड़ खड़ी हो गई। तब एज़रा ने यहावे महान परमेश्वर की स्तुति की और भीड़ ने कहा आमेन आमेन। उन सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए थे तब बड़े ही आदर के साथ भीड़ ने भूमि की ओर झुककर यहावे की स्तुति की। उनके मुंह जमीन पर ही लगे रहे। जब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर ठहरे हुए थे यशुआ, बानी, शेरेभिया, यामीन, अक्कूब, शबेथाई, होदिया, मासेया, केलीता, अजरिया, योजाबाद, आनन, पेलाया और लेवी लोगों को व्यवस्था की पुस्तक का मतलब साफ साफ समझाते जाते थे। वे इस पुस्तक से पढ़ते जाते परमेश्वर की व्यवस्था में से और वे उसका अनुवाद भी करते जाते थे कि सभी लोग पढ़े गए भाग को समझते भी जाए। तब नहेमिया ने, जो राज्यपाल थे, पुरोहित एज़रा ने, जो व्यवस्था के ज्ञानी थे, और लेवियों ने, जो सभी लोगों के शिक्षक थे, घोषणा की यहावे तुम्हारे परमेश्वर के सामने यह दिन पवित्र है। ना तो शोकित हो और ना ही रो, क्योंकि व्यवस्था के वचन सुनकर सभी लोग रोने लगे थे। नहेमिया ने उन्हें आदेश दिया जाइए अच्छा अच्छा भोजन कीजिए, मीठा मीठा रस पीजिए और कुछ भाग उसे भी दे दीजिए जिसके पास यह सब तैयार किया हुआ नहीं है, क्योंकि यह दिन हमारे यहावे के सामने पवित्र है। दुखी ना रहिए क्योंकि यहावे के दिए हुए आनंद में ही आपका बल है। इस प्रकार लेवियों ने सभी को यह कहकर साथ शांत किया। आप शांत हो जाइए, आप दुखी न हो, क्योंकि यह पवित्र दिन है। तब सभी लोग खाने पीने के लिए चले गए और उन्होंने उत्सव के लिए कुछ भाग दूसरों को भी दिए, क्योंकि यह एक खास उत्सव था। यह इसलिए कि उन्होंने पवित्र व्यवस्था विधान का मतलब समझ लिया था। इसके बाद दूसरे दिन सारी प्रजा के पितरों के प्रधान, पुरोहित और लेवी व्यवस्था के ज्ञानी इज़रा के सामने इकट्ठा हुए कि यह मालूम कर सके कि व्यवस्था के वचनों का मतलब क्या है। उनके विचार करने का विषय था मोशे के द्वारा यहावे की आज्ञा अनुसार सातवें महीने में झोपड़ियों के उत्सव के मौके पर इज़राइल वंशजों का रहन सहन कैसा हो। इसलिए उन्होंने घोषणा करके यरूशलेम में और राज्य के सभी नगरों में यह घोषणा करवा दी। पहाड़ों पर जाके जैतून, जंगली जैतून, मेहंदी, खजूर और अन्य पत्तियों के पेड़ों की डालियां लाए जाए कि इनका इस्तेमाल व्यवस्था में लिखी हुई विधि के अनुसार झोपड़ियां बनाने के लिए किया जा सके। तब लोग बाहर गए और डालियां लेकर आए और अपने अपने लिए झोपड़ियां बना ली। हर एक ने अपनी छत पर और अपने आंगन में और परमेश्वर के भवन के आंगन में उस चौक में जो जल फाटक के सामने है और एफ्राइम फाटक के सामने के चौक पर बंधुआई से लौटे हुए की पूरी भीड़ ने झोपड़ियां बनाई और उनमें रहे भी, बल्कि इज़राइल वंशजों ने नून के पुत्र यहोशू के शासनकाल से अब तक यह नहीं किया था। यह बहुत बड़ा आनंद का उत्सव हो गया। एज़रा हर रोज पहले दिन से आखिरी दिन तक परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से सुनाया करते थे। आदेश के अनुसार आठवें दिन विशेष महासभा बुलाई गई।
नहेमिया अध्याय 9। इज़राइलियों द्वारा पाप अंगीकार। इसी महीने की 24वीं तारीख पर इज़राइली इकट्ठा हुए। वे उपवास कर रहे थे, वे टाट पहने हुए थे और उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल भी डाल ली थी। इज़राइलियों ने अपने आप को सभी परदेशियों से अलग कर लिया था। वे खड़े हो गए और उन्होंने वहां अपने पाप और अपने पूर्वजों के पापों को भी अंगीकार किया। जब वे अपनी अपनी जगह पर ही खड़े थे, वे 6 घंटे यहावे अपने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते रहे और बाकी 6 घंटे वे यहावे अपने परमेश्वर के सामने पाप अंगीकार और उनकी स्तुति करते रहे। इसके बाद यशुआ, बानी, कदमियल, शेबानिया, बुन्नी, शेरेबिया, बानी और कैनानी लेवियों के लिए ठहराई गई चौकी पर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में यहावे अपने परमेश्वर की दोहाई दी। इसके बाद लेवियों, यशुआ, कदमियल, बानी, हशबनहिया, शेरेबिया, होदिया, शेबानिया और पेथाइया ने भीड़ को आज्ञा दी, उठो यहावे अपने परमेश्वर की हमेशा स्तुति करते रहो। आपका महिमा में नाम धन्य कहा जाए और यह सारी प्रशंसा और स्तुति से ऊपर ही बनी रहे। वह यहावे तो सिर्फ आप ही है, आकाशमंडल के बनाने वाले आप ही हैं, आकाशमंडल और सारे नक्षत्र, यह पृथ्वी और उस पर की सारी वस्तुएं, सागर और उनमें की सारी वस्तुएं, आपने उन सबको जीवन दिया है। आकाश की शक्तियां आपके सामने झुककर आपको दंडवत करती है। आप ही वह यहावे परमेश्वर हैं जिन्होंने अब्राम को चुना और उन्हें कसदियों के उर में से निकाला और उन्हें वह नाम अब्राहम दिया। आपने यह जान लिया था कि उनका हृदय आपके प्रति विश्वास योग्य है, इसलिए आपने उनके साथ वाचा बांधी कि आप उन्हें कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिजियों, यबूसियों, गिरगाशियों का देश उनके वंशजों को देंगे। आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर हैं। मिस्र में हमारे पूर्वजों का दुख आपने देखा था, लाल सागर तट पर आपने उनकी विनती सुन ली। तब आपने फरो के विरोध में चिन्ह और अद्भुत चमत्कार दिखाए। यह सब आपने फरो के सेवकों और मिस्र देश की प्रजा के विरुद्ध किया,
क्योंकि आप यह देख रहे थे कि वे यह सब हमारे पूर्वजों के विरुद्ध कर रहे थे। ऐसा करके आपने अपने लिए बड़ा नाम किया है जो आज तक बना है। आपने उनके सामने सागर को दो भाग कर दिया। वे सागर के बीच में से सूखी जमीन पर चलते हुए चले गए। जो उनका पीछा कर रहे थे आपने उन्हें गहराइयों में ऐसा डाल दिया जैसे उफनते हुए समुद्र में पत्थर डाला जाए। दिन में आप उनका मार्गदर्शन बादल के खंभे से और रात में आग के खंभे से करते थे कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उस पर उजाला बना रहे। तब आपने सीनाई पहाड़ पर उतरकर स्वर्ग से उनसे बातें की। आपने उनके लिए सच्ची व्यवस्था और अच्छी आज्ञाएं दी, आदर्श व्यवस्था और आज्ञा। आपने उन्हें अपने पवित्र शब्बात के बारे में बताया। आपने उनकी भलाई में अपने सेवक मोशे के द्वारा आज्ञाएं, विधियां और व्यवस्था दी। आपने उनकी भूख मिटाने के लिए स्वर्ग से भोजन दिया, उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी निकाला। आपने उन्हें आज्ञा दी कि उस देश में प्रवेश कर उस पर अधिकार करें जिसे देने की आपने उनसे प्रतिज्ञा की थी। मगर उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने घमंड किया, वे हठीले बन गए और उन्होंने आपके आदेशों को ना माना। उन्होंने आपकी आवाज को सुनना ही ना चाहा। उन्होंने आपके द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कारों को भुला दिया जो आपने उनके बीच में किए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मिस्र की बंधुआई में लौट जाने के लक्ष्य से अपने लिए एक प्रधान चुन लिया। किंतु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी और दयालु, क्रोध करने में धीमे और प्रेम करने में अपार। आपने उन्हें अकेला ना छोड़ा उस मौके पर भी जब उन्होंने अपने लिए बछड़े की मूर्ति बनाई थी और यह घोषित कर दिया था, यही है तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला है। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर का बहुत अपमान किया। अपनी अद्भुत दया में आपने उन्हें बंजर भूमि में अकेला ना छोड़ा। दिन में ना तो बादल के खंभे ने उनका साथ छोड़ा कि उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहे, ना ही रात में उस आग के खंभे ने कि उनके रास्ते में उजाला रहे जिस पर उन्हें आगे बढ़ना था। आपने अपना भला आत्मा उनके लिए दे दिया कि वह उन्हें समझाते जाए। आपने उन्हें मन्ना खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी हमेशा बना रहा। सच तो यह है कि बंजर भूमि में आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी ना हुई, ना उनके कपड़े ही फटे और ना ही उनके पैरों में सूजन आई। आपने राज्य और लोग उनके वश में कर दिए और उन्हें क्षेत्र का हर एक कोना भी दे दिया। उन्होंने हेशबोन के राजा सीहोन के देश पर अधिकार कर लिया और बाशान के राजा ओग के देश पर भी। आपने उनके वंशजों की गिनती आकाश के तारों के समान अनगिनत कर दी और उन्हें उस देश में ले आए जिसमें प्रवेश कर उस पर अधिकार कर लेने का आदेश आपने उनके पूर्वजों को दिया था। तब उनके वंशजों ने उस देश में प्रवेश किया और उस पर अधिकार कर लिया। आपने ही उनके सामने से उस देश के निवासी कनानियों को उनके अधीन कर दिया। उस देश के राजा और प्रजा को आपने उनके हाथ में दे दिया कि वे उनके साथ अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करें। उन्होंने गढ़ नगरों और उपजाऊ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने उन सभी घरों को अपने अधिकार में कर लिया जिनमें सब प्रकार के अच्छे अच्छे सामान भरे हुए थे। चट्टानों में खोदा गया होद, अंगूर के बगीचे, जैतून के बगीचे और बहुल फलदाई पेड़, वे उनको खाते थे। वे तृप्त हुए, वे अच्छी तरह से पोषित होते चले गए और आपकी बड़ी भलाई के प्रति वे खुशी मनाते रहे। फिर भी वे आपसे फिर गए और उन्होंने आपसे विद्रोह किया। उन्होंने तो आपकी व्यवस्था को अपने पीठ पीछे फेंक दिया। वे उन भविष्यवक्ताओं का वध कर देते थे जो उन्हें इस उद्देश्य से चेतावनी और झिड़कियां देते थे कि वे आपकी ओर लौट जाए। वे परमेश्वर की घोर निंदाएं करते चले गए। यही कारण था कि आपने उन्हें उनके सताने वालों के अधीन कर दिया।
जो उन्हें सताते रहे, मगर जब अपने दुख के समय में उन्होंने आपकी दुहाई दी, आपने अपनी बड़ी करुणा के अनुसार स्वर्ग से उनकी सुन ली, आपने उनके लिए छुड़ाने वाले भी भेजे, मगर जैसे ही उन्हें यह छुटकारा मिलता था, वे आपके सामने दोबारा बुराई करने लगते थे। फलस्वरूप आपने उन्हें उनके शत्रुओं के अधीन कर दिया कि वे उन पर शासन करें। जब उन्होंने आपकी दोहाई दी, आपने स्वर्ग से उनकी सुन ली, बहुत बार आपने अपनी करुणा के अनुसार उन्हें छुड़ाया, उन्हें अपनी व्यवस्था की ओर फेरने के उद्देश्य से आप उन्हें चेतावनी पर चेतावनी देते रहे, मगर वे अपने हठ में ही अड़े रहे, आपके आदेशों को ना मानते थे और आपके नियमों के विरुद्ध पाप करते रहे, जिनका पालन करने में ही मानव का जीवन है। अपने हठ में वे आपकी आज्ञा को ठुकराते चले गए, फिर भी सालों तक आप उनकी सहते रहे। आप उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से चेतावनी देते रहे, मगर तब भी उन्होंने आपकी ना सुनी, इसलिए आपने उन्हें उन देशों के निवासियों के अधीन कर दिया। फिर भी अपनी अपार दया में आपने उन्हें मिटा नहीं दिया और ना ही उन्हें अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर, आप जो महान, सर्वशक्तिमान और भय योग्य हैं, जो अपनी वाचा को स्थिर रखते हैं, जो करुणा से भरपूर हैं, आपकी नज़रों में हमारी सारी कठिनाइयां छोटी ना जानी जाए। वे सभी कठिनाइयां हम पर, हमारे राजाओं पर, हमारे शासकों पर, हमारे पुरोहितों पर, हमारे भविष्यवक्ताओं पर, हमारे पूर्वजों पर और आपके सभी लोगों पर अश्शूर के राजाओं के समय से आज तक आती रही है। फिर भी जो कुछ आपने हम पर भेजा है, उसमें आप न्यायी ही हैं, क्योंकि आपका व्यवहार विश्वास योग्य था, मगर हमने ही दुष्टता की है, क्योंकि हमारे राजाओं ने, हमारे पुरोहितों ने और हमारे पूर्वजों ने आपकी व्यवस्था का पालन नहीं किया और ना ही उन्होंने आपके आदेशों की ओर ध्यान दिया है, ना आपकी चेतावनियों पर। वह राज्य जो आपने उन्हें अपनी भलाई में दिया था, जो विशाल और फलवंत देश था, जो उन्हें आपकी दी हुई भेंट थी, उसमें उन्होंने ना तो आपकी सेवा की और ना ही अपने बुरे कामों से दूर हुए। देख लीजिए, हम आज भी दास ही हैं, हम उसी देश में दास होकर रह रहे हैं जिसे आपने हमारे पूर्वजों को यह कहते हुए दिया था, इसकी अच्छी उपज को खाओ। इसकी उपज अब उन राजाओं की होकर रह गई है जिन्हें आपने ही हमारे पापों के कारण हम पर अधिकारी बना दिया है। वे तो हमारे शरीर और हमारे पशुओं तक पर अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, इसके कारण हम बहुत दर्द में पड़े हैं। नई वाचा का आना। यह सब देख हम अब एक वाचा लिखकर बना रहे हैं, इस पर हमारे नायकों, लेवियों और पुरोहितों के नाम की मोहर भी लगा देते हैं।
नहेमिया अध्याय 10। इस वाचा पर मोहर लगाने वालों के नाम इस प्रकार है: हाकालिया के पुत्र राज्यपाल नहेमिया और सिदकियाहू, सेराइया, अजरिया, येरेमिया, पशहूर, अमरिया, मालकिया, अतूश, शेबानिया, मल्लूक, हारीम, मेरेमोत, ओबदिया, दानियेल, गिनेथोन, बारूक, मेशुल्लाम, अबिया, मियामीन, माजिया, बिलगाई, शेमाया, यह सभी पुरोहित थे। लेवी ये थे: अजनिया का पुत्र येशुआ, बिन्नुई जो हेनादाद के वंशजों से था, कदमियेल, उनके भाई थे शेबानिया, होदिया, केलीता, पेलाहिया, हानन, मीका, रेहोब, हशाबिया, जक्कूर, शेरेबिया, शेबानिया, होदिया, बानी, बेनिनू। लोगों के नायक इस प्रकार थे: पारोश, पाहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबाई, अदोनिया, बिगवाई, आदीन, अतेर, हिजकिया, अजजूर, होदिया, हाशूम, बेजाई, हरीफ, अनाथोत, नेबाए, मगफियाश, मेशुल्लाम, हेजीर, मेशेजाबेल, सादोक, यद्दुआ, पेलाथिया, हानन, अनाहिया, होशिया, हननिया, हसशूब, अलेहेश, पिल्हा, शोबेक, रेहूम, हशाबना, मासेहिया, अहिया, हानन, अनान, मल्लूक, हारिम और बहना। इसके बाद बचे हुए लोग पुरोहित, लेवी, द्वारपाल, गायक, मंदिर के सेवक और वे सभी जिन्होंने खुद को परमेश्वर की व्यवस्था के लिए देश देश के लोगों से अलग कर रखा था, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र पुत्रियां और वे सभी जिनमें ज्ञान और समझ थी, अपने संबंधियों और उनके रईसों के साथ मिल गए। इन्होंने अपने आप पर एक शाप ले लिया और उन्होंने यहावे की व्यवस्था के पालन करने की शपथ ली, वह व्यवस्था जो परमेश्वर के सेवक मोशे द्वारा दी गई थी। सभी ने प्रण किया कि वे परमेश्वर हमारे प्रभु यहावे की सभी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करने में चौकसी करेंगे। उन्होंने यह शपथ भी ली कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह इस देश के निवासियों से ना होने देंगे और ना अपने पुत्रों के लिए उनकी पुत्रियों को लाएंगे। उस स्थिति में जब उस देश के निवासी किसी शब्बात पर या किसी अलग किए हुए प्रभु के शब्बात पर बेचने के लिए अपना कुछ सामान या अनाज लेकर आए, हम शब्बात पर या ऐसे अलग किए हुए दिन पर हम उनसे इसको नहीं खरीदेंगे। हम हर सातवें साल ना तो खेती करेंगे और ना उधार में दिए हुए पैसों को वापस लेने की कोशिश करेंगे। हमने खुद अपने ऊपर यह जवाबदारी भी ले ली कि हम हर साल एक तिहाई शेकेल का दान दिया करेंगे कि यह परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए, पवित्र रोटी के लिए, नित्य अन्न बलि के लिए, नित्य होम बलि के लिए, शब्बातों के लिए, नए चांद के लिए, ठहराए गए अवसरों के लिए, अलग की गई वस्तुओं के लिए और पाप बलि के लिए, कि उनके द्वारा इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया जा सके और हमारे परमेश्वर के भवन के सारे कामों में यह योगदान दे सके। इसके अलावा हमने पुरोहितों, लेवियों और लोगों के बीच लकड़ी की भेंट के लिए चिट्ठी डाली कि वे इसे हर साल अपने अपने पितरों के अनुसार इस सभी अवसरों पर हमारे परमेश्वर के भवन में ले आए कि यहावे हमारे परमेश्वर की वेदी पर आग जलाई जा सके, जैसा कि व्यवस्था का आदेश है, कि वे इस भूमि की पहली उपज को, हर एक पेड़ के पहले फल को हर साल यहावे के भवन में ले आया करें, कि वे हमारी संतान के, अपने पशुओं के, अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों को लिखी गई विधि के अनुसार हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे पुरोहितों के सामने हमारे परमेश्वर के भवन में ले आए। हम खुद भी अपने गूंधे हुए आटे का पहला भाग, अपने दान, हर एक पेड़ का फल, नई दाख मधु का और तेल का पहला भाग हमारे परमेश्वर के भवन के कमरों में नित्य पुरोहितों के सामने ले आएंगे और अपनी भूमि की उपज का दसवां भाग लेवियों के सामने, क्योंकि लेवी ही सभी नगरों में दसवें अंश के अधिकारी हैं। अहरोन के वंश का कोई पुरोहित उस अवसर पर लेवी के साथ रहेगा जब लेवी दसवां भाग इकट्ठा करते हैं। तब लेवी हमारे परमेश्वर के भवन में आए दसवें भाग का दसवां भाग लेकर जाएगा, यानी भंडार घर के कमरों में इज़राइल वंशज और लेवी वंशज अनाज के दान, नई दाख मधु और तेल उन कमरों में ले आएंगे, वहां पवित्र स्थान में इस्तेमाल के लिए ठहराए गए बर्तन रखे होंगे और वहां सेवा कर रहे पुरोहित, द्वारपाल और गायक ठहराए हुए रहते हैं। इस प्रकार हम हमारे परमेश्वर के भवन को अकेला ना छोड़ेंगे। नेहेमिया अध्याय 11। यरूशलेम के लोगों की गिनती। इस पर प्रजा नायक यरूशलेम में बस गए, मगर बाकी लोगों ने चिट्ठी डालकर 10-10 में से एक व्यक्ति को पवित्र नगर यरूशलेम में बस जाने के लिए ठहराया, जबकि बचे हुए 9 लोग दूसरे नगरों में रह गए। प्रजा ने उन व्यक्तियों की बहुत तारीफ की जो अपनी इच्छा से यरूशलेम में बसने के लिए तैयार हो गए थे। ये वे हैं जो राज्य प्रदेशों पर अधिकारी थे, जो यरूशलेम में ही रहते थे, मगर यहूदिया के नगरों में हर एक प्रधान अपनी अपनी संपत्ति में अपने अपने नगरों में रहता था। इज़राइल के वंशजों के पुरोहित, लेवी, मंदिर के सेवक और शलोमोन के सेवकों के वंशज, यहूदा और बिन्यामीन के कुछ वंशज यरूशलेम में ही रहते थे। यहूदा के वंशज ये थे: अथलिया, जो उज्जिया का पुत्र था, जो जकरिया का, जो अमरिया का, जो शेपाथिया का, जो महालालेल का, जो पेरेज के वंशज थे, मासेया, जो बारूक का पुत्र था, जो कोल होजे का, जो हजाइया का, जो अधैया का, जो योई आरीब का, जो जकरिया का, जो शेला के वंशज थे। यरूशलेम में रह रहे पेरेज के सभी 468 वंशज वीर योद्धा थे। बिन्यामीन के वंशज ये हैं: सल्लू, जो मेशुल्लाम का पुत्र था, जो योवेद का, जो पेधाइया का, जो केलाहिया का, जो मासेया का, जो इथियेल का, जो येशाया का पुत्र था, और उसके बाद गब्बाई और सल्लाई, कुल 928 व्यक्ति। इनका प्रधान था जिक्री का पुत्र योएल, हससनुहा का पुत्र यहूदा नगर का सह अधिकारी था। पुरोहित वर्ग में से योई आरीब का पुत्र येधाया याकीन, सेराया, जो हिल्किया का पुत्र था, जो मेशुल्लाम का, जो सादोक का, जो मेरायोत का, जो परमेश्वर के भवन के प्रधान अहितूब का पुत्र था। इनके अलावा उनके 822 संबंधी, जो मंदिर में संबंधित कार्यों के लिए चुने गए थे, और अधाइया, जो येरोहाम का पुत्र था, जो पेलाहिया का, जो आमजी का, जो जकरिया का, जो पशहूर का, जो मालकिया का, और उसके 242 रिश्तेदार जो पितरों के प्रधान थे, और अमाशसाई, जो अजरेल का पुत्र था, जो अहजाई का, जो मेशिल्लेमोत का, जो इमर का पुत्र था, और उनके भाई 128 शूर योद्धा। उनका अधिकारी था जाबदियेल, जो हगे दालीम का पुत्र था। लेवियों में से शेमहिया, जो हसशूब का पुत्र था, जो अजरिकाम का, जो हशाबिया का, जो बुन्नी का पुत्र था, और शबेथाई और योजाबाद, जो लेवियों के प्रधानों में से थे, जिनकी जवाबदारी थी परमेश्वर के भवन से संबंधित बाहरी काम, और मतनिया, जो मीका का पुत्र था, जो जब्दी का, जो आसफ का, जो प्रार्थना में धन्यवाद देने वालों का मुखिया था, और बकबुकिया, भाई बंधुओं में दूसरा पद रखता था, और अब्दा, जो शमुआ का पुत्र था, जो गलाल का, जो यदुथून का पुत्र था। पवित्र नगर में रह रहे लेवियों की पूरी गिनती थी 284। इनके अलावा अक्कूब, तालमोर और उनके 172 रिश्तेदार जो फाटकों पर चौकसी किया करते थे। इनके अलावा बाकी इजरायली पुरोहित और लेवी यहूदिया के अलग अलग नगरों में बसे हुए थे, हर एक अपने अपने भाग की जमीन पर। हाँ, मंदिर के सेवक ओफेल नगर में बस गए थे, जीहा और गिश्पा मंदिर सेवकों के अधिकारी थे। यरूशलेम में लेवियों के मुखिया थे उज्जी, जो बानी का पुत्र था, जो हशाबिया का, जो मतनिया का, जो मीका का पुत्र, जो आसफ के वंशजों में से एक था। ये सब परमेश्वर के भवन में आराधना के गाने के लिए चुने गए गायक थे, क्योंकि उनके लिए राजा के विशेष आदेश और तय नियम थे, जिनके अनुसार उनके लिए हर रोज का काम तय किया गया था। पेताहिया, जो मेशेजाबेल का पुत्र था, जो जेरा के पुत्रों में से एक था, जेरा जो यहूदा का पुत्र था,
पेताहिया प्रजा से संबंधित सभी कामों में राजा से साथ रहता था। उन गांवों के विषय में यही कहा जा सकता है जिनमें खेत भी थे। यहूदा के कुछ वंशज किर्यथर्बा और इसके नगरों में, दीबोन और उसके नगरों में, और जेक पजील और उसके गांवों में, येशुआ में, मोलाधा में, और बेत पेलेट में, हाजर शुअल में, बेशरबा और इसके नगरों में, जिकलाग में, मेकोने में और इसके नगरों में, एन रिमोन में, जोरा में और यरमूथ में, जानोहा में, अदुल्लाम में और इनके गांव में लाकीश और इनके खेतों में, अजेका और इसके नगरों में रहते थे। इस तरह यहूदिया के निवासी बेशरबा से लेकर हिन्नोम घाटी तक बसते चले गए। बिन्यामीन के वंशज भी गेबा से आगे की ओर बसते चले गए, मिकमाश और अय्या में, बेथेल और इसके नगरों में, अनाथोत, नोब, अननिया, हाजोर, रामा, गिथाइम, हदीद, जेबोइम, नेबल्लात, लोद और ओनो में, जो शिल्पियों की घाटी कहलाता है। यहूदिया के कुछ लेवी बिन्यामीन क्षेत्र में बसने चले गए। नहेमिया अध्याय 12। वे लेवी और पुरोहित जो जेरुबाबेल के साथ लौटे। शियल्तियेल के पुत्र जेरुबाबेल और येशुआ के साथ लौटे पुरोहित एव लेवियों के नाम ये हैं: सेराइया, येरेमिया, एज़रा, अमरिया, मल्लूक, हतूश, शेकानिया, रेहूम, मेरेमोत, इद्धो, गिनेथोन, अभिया, मियामीन, मोवादिया, बिलगा, शेमहा, योई आरीब, येधाइया, सल्लू, अमोक, इल्किया और येधाइया। येशुआ के समय में ये सभी पुरोहितों के प्रधान और उनके रिश्तेदार थे। ये लेवी येशुआ, बिन्नुई, कदमियेल, शेरेभिया, यहूदा थे। इनके अलावा अपने संबंधियों के साथ मतनिया भी, मतनिया धन्यवाद के गीतों का अधिकारी था। आराधना के मौके पर बकबुकिया और उन्नी अपने रिश्तेदारों के साथ एक झुंड में उनके सामने खड़े हुआ करते थे। येशुआ योई आकीम का पिता था, योई आकीम एलियाशिब का, एलियाशिब योई यादा का, योई यादा योनातन का, और योनातन यद दुआ का पिता था। योई आकीम के दिनों में पुरोहित और पितरों के मुखिया ये थे: सेराइया के कुल से मेराइया, येरेमिया कुल से हनानिया, एज़रा कुल से मेशुल्लाम, अमरिया कुल से येहोहानन, मल्लूक से योनातन, शेबानिया से योसेफ, हारीम से आदना, मेराइयोत से हेलकाई, इद्धो से जकरिया, गिनेथोन से मेशुल्लाम, अभिया से जिक्री, मिन्यामीन और मोवादिया से पिलताई, बिलगा से शमुआ, शेमाया से योनातन, योई आरीब से मतेनाई, योधाइया से उज्जी, सल्लू से कल्लाई, अमोक से एबर, इल्किया से हशाबिया, और येधाइया के कुलों से नेथानेल। लेवियों के संबंध में यह हुआ कि उनके पितरों के प्रधानों का नाम एलियाशीब, योयादा, योहानन और यद्दुआ के समय में लिखा गया था। उसी प्रकार पुरोहितों का नाम भी फारस के राजा दार्यावेश के समय में लिखा गया था। लेवी के वंशज जो पितरों के मुखिया थे, उनका नाम एलियाशिब के पुत्र योहानन के समय में लिखा जा चुका था। हशाबिया, शेरेबिया और कदमियेल का पुत्र येशुआ लेवियों में प्रमुख थे। इनका चुनाव परमेश्वर के भक्त दाविद की आज्ञा के अनुसार समूहों में स्तुति और धन्यवाद देने के लिए किया गया था। इनके रिश्तेदार इनके सामने खड़े हुआ करते थे: मतनिया, बकबुकिया, ओबदिया, मेशुल्लाम, तालमोन और अक्कूब द्वारपाल थे, जो फाटकों के पास के भंडारों की चौकसी करते रहते थे। ये योजादक के पोते, येशुआ के पुत्र, योई आकीम और राज्यपाल नहेमिया और पुरोहित और शास्त्री एज़रा के समय के सेवक थे। शहरपनाह की प्रतिष्ठा।
यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने सभी स्थानों से लेवियों को ढूंढ निकाला कि उन्हें यरूशलेम लाया जा सके कि वे इस प्रतिष्ठा के उत्सव को आनंद में झांझो, सारंगी और वीणा बजाकर और धन्यवाद के गीतों को गाकर मना सके। तब गायकों के पुत्र यरूशलेम के पास के क्षेत्रों से और नेतोफातियों के गांव से इकट्ठा हो गए, बेत गिलगाल और अपने खेतों से, गेबा और अजमावेत से भी, क्योंकि इन गायकों ने अपने लिए यरूशलेम के पास के क्षेत्रों में गांव बना लिए थे। पुरोहितों और लेवियों ने अपने आप को शुद्ध किया, उन्होंने लोगों, फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। मैंने यहूदिया के हाकिमों को अपने पास शहरपनाह के ऊपर आमंत्रित किया और दो बड़े गायकों के झुंड को धन्यवाद देने की जवाबदारी सौंप दी। पहले गायकों के झुंड का काम था कि वह शहरपनाह पर चढ़कर दाईं ओर कूड़ा फाटक की दिशा में आगे बढ़े। होशाया और यहूदिया के प्रधानों में से आधे प्रधान उनका अनुसरण कर रहे थे। अजरिया, एजरा, मेशुल्लाम, युधा, बिन्यामीन, शेमाया, येरेमिया और तुरियों के साथ पुरोहितों के कुछ पुत्र भी उनके साथ थे, और जकरिया जो योनातन का पुत्र था, जो शेमाया का, जो मथनिया का, जो मिकाया का, जो जक्कूर का, जो आसफ का पुत्र था, उसके साथ उसके संबंधी शेमाया, अजारेल, मिलालई, गिलालाई, माई, नेथानेल, यूधा और हनानी थे। यह अपने साथ परमेश्वर के जन दाविद के बाजे लिए हुए थे। शास्त्री एजरा उनके आगे आगे थे। झरना फाटक शहर पना पहुंचकर वे दाविद नगर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। वे सीधे दाविद के घर के ऊपर की दीवार की सीढ़ियों से पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंच गए। दूसरा गायकों का झुंड बाईं ओर बढ़ गया। मैं उनका अनुसरण कर रहा था। आधा झुंड शहरपनाह के उस भाग पर था जो भट्टियों के खंभे के ऊपर बनाई गई थी। हम लोग भट्टियों के मीनारों के ऊपर बनी शहरपनाह से चौड़ी शहरपनाह की ओर बढ़े, फिर एफ्राइम फाटक की ओर, पुराने फाटक की ओर, मछली फाटक की ओर, अनानेल खंभे की ओर और शतक खंभे की ओर जाते हुए मछली फाटक तक। वे सभी पहरेदार फाटक पर जाकर ठहर गए। इसके बाद दोनों ही गायकों के झुंड परमेश्वर के भवन में जाकर खड़े हुए। मैं भी वहां जा खड़ा हुआ। मेरे साथ वहां अधिकारी वर्ग में से आधे अधिकारी शामिल थे। वहीं शोफार लिए हुए पुरोहित थे एलियाकीम, मासेहिया, मिन्यामीन, मेखाइया, एलियोएनाई, जकरिया और हन्निया। इनके अलावा वहां मासेहिया, शेमाया, एलियाजर, उज्जी, यहोहानन, मालखिया, एलाम और एजर नामक पुरोहित भी थे। यिज्राहिया के निर्देशन में गायकों ने अपना गाना प्रस्तुत किया। उस मौके पर लोगों ने बड़ी बड़ी बलियां चढ़ाई। वहां बहुत ही आनंद मनाया जा रहा था, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से दिया गया आनंद था। यहां तक कि स्त्रियों और बच्चे तक आनंद मना रहे थे। फलस्वरूप यरूशलेम का यह आनंद दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। उसी अवसर पर भंडारों के अधिकारी भी चुने गए कि वे सभी दान, पहले फलों, दसवें अंश को नगरों के खेतों के अनुसार व्यवस्था के द्वारा उन भागों को पुरोहितों और लेवियों के लिए इकट्ठा करें, क्योंकि यह यहूदिया के लोगों के लिए आनंद का विषय था कि ये पुरोहित और लेवी सेवा करते थे। इन सभी ने दाविद और उनके पुत्र शलोमोन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार गायकों और द्वारपालों के साथ मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना और शुद्ध करने की सेवा की, क्योंकि पहले के समय में, यानी दाविद और आसफ के समय में, गायकों के लिए एक प्रधान हुआ करता था। जब वे परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत और धन्यवाद के गीत प्रस्तुत किया करते थे। इस प्रकार जेरुबाबेल और नेहेमिया के शासनकाल में गायकों और द्वारपालों के लिए ठहराए गए हर दिन का भाग सभी इज़राइली चढ़ाया करते थे और लेवियों का भाग पवित्र करके दिया करते थे। और तब लेवी अहरोन के वंशजों के लिए ठहराया गया भाग अलग रख दिया करते थे।
नेहेमिया अध्याय 13। नेहेमिया का अंतिम सुधार। उस दिन सभा के लिए मोशे की पुस्तक ऊंची आवाज में पढ़ी गई। इस पुस्तक में यह लिखा हुआ पाया गया कि परमेश्वर की सभा में ना तो किसी अमोनी के और ना किसी मोआबी के प्रवेश की आज्ञा है, क्योंकि उन्होंने इज़राइल के लिए भोजन और पानी का इंतजाम करने की बजाय उन पर शाप देने के लक्ष्य से बिलाम को पैसे दिए थे। मगर हमारे परमेश्वर ने शाप को आशीर्वाद में बदल दिया, इसलिए जब उन्होंने उस व्यवस्था को सुना, उन्होंने सभी विदेशियों को इज़राइल में से बाहर कर दिया। इसके पहले पुरोहित एलियाशीब, जिसे हमारे परमेश्वर के भवन के कमरों का अधिकारी चुना गया था, वास्तव में तोबिया का रिश्तेदार था। उसने तोबिया के लिए एक बड़े कमरे को बना रखा था, जहां इसके पहले अनबली, लोबान, तरह तरह के बर्तन और लेवियों, गायकों, द्वारपालों और पुरोहितों के लिए इकट्ठा दानों के ठहराए गए अन्न, अंगूर के रस और तेल का दसवां भाग जमा किया जाता था। मगर ऐसा हुआ कि इस समय में मैं यरूशलेम में था ही नहीं, क्योंकि बाबेल के राजा अर्थशिस्ता के समय के 32वें साल में मैं राजा से मिलने गया हुआ था। मगर यहाँ कुछ समय रहने के बाद मैंने राजा की आज्ञा ली और यरूशलेम आ गया। मुझे उस बुराई के बारे में पता चला जो एलियाशीब ने तोबिया के लिए किया। उसने परमेश्वर के भवन के आंगन में तोबिया के लिए एक कमरा तैयार किया था। इससे मैं बहुत नाराज हुआ। तब मैंने तोबिया का सारा सामान उस कमरे के बाहर फेंक दिया। तब मेरे आदेश पर वे कमरे शुद्ध किए गए। मैंने परमेश्वर के भवन के बर्तन, अनबलि और लोबान दोबारा उस कमरे में रखाव दिए। तब मुझे यह भी पता चला कि लेवियों के लिए ठहराया हुआ भाग उन्हें दिया ही नहीं गया था, फलस्वरूप तरह तरह की सेवाओं के लिए चुने गए लेवी और गायक सेवा का काम छोड़कर जा चुके थे अपने अपने खेतों में खेती करने। इसलिए मैंने अधिकारियों को फटकार लगाई, परमेश्वर का भवन क्यों छोड़ दिया गया है। तब मैंने उन सबको वापस बुलाकर उन्हें सेवा के काम पर दोबारा नियुक्त कर दिया। तब सारे यहूदिया के लोगों ने भंडार में अनाज, अंगूर का रस और तेल का दसवां भाग रखवा दिया। तब मैंने पुरोहित शेलेमिया को, शासक सादोक को और लेवियों में से पेधाया को भंडारों का अधिकारी ठहरा दिया। उनके अलावा मैंने मतनिया के पोते जकूर के पुत्र हनान को चुना, क्योंकि ये सभी विश्वास योग्य पाए गए। इनकी जवाबदारी थी अपने रिश्तेदारों में सामग्री बांटना। परमेश्वर, इस काम के लिए आप मुझे याद रखे, सच्चाई से किए गए मेरे कामों को जो मैंने परमेश्वर के भवन और इसकी सेवा में किए हैं, आप मिटाना दीजिए। उन्हीं दिनों में मेरे सामने यह भी आया कि यहूदिया में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो शब्बात पर अंगूर रौंद रहे थे, कुछ अनाज के बोरे नगर में ला रहे थे, कुछ इन्हें गधों पर लाद रहे थे। सभी प्रकार का सामान शब्बात पर यरूशलेम में लाया जा रहा था, वैसे ही अंगूर का रस, अंगूर, अंजीर और सभी प्रकार के बोझ। इसलिए मैंने शब्बात पर भोजन बेचने पर उन्हें डांटा। यरूशलेम में कुछ सोरवासी भी रहने लगे थे जो मछली और सब प्रकार का बिकने वाला सामान वहां से बिक्री कर रहे थे। वे यह सब यहूदा के वंशजों को शब्बात पर बेच रहे थे, हाँ, यरूशलेम ही में। तब मैंने यहूदिया के रईसों को फटकार लगाई। मैंने उनसे कहा, आप लोग शब्बात को अपवित्र कर यह कैसी बुराई कर रहे हैं? क्या आपके पूर्वजों ने यह नहीं किया था, जिसके फल स्वरूप हमारे परमेश्वर ने हम पर और इस नगर पर यह सारी विपत्ति डाल दी है? यह होने पर भी आप लोग शब्बात को अपवित्र करके इज़राइल पर परमेश्वर के क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तब यह हुआ कि शब्बात शुरू होने के ठीक पहले, जब यरूशलेम के फाटकों पर अंधेरा छा ही रहा था, मैंने आदेश दिया कि फाटक बंद कर दिए जाए और वे शब्बात खत्म होने के पहले बिल्कुल ना खोले जाए। इसके बाद मैंने अपने ही कुछ सेवकों को फाटकों पर ठहरा दिया कि शब्बात पर किसी भी बोझ को अंदर ना आने दिया जाए। एक या दो मौके ही ऐसे गए होंगे जब विभिन्न प्रकार के व्यापारियों और बेचने वालों ने यरूशलेम के बाहर रात बिताई थी। तब मैंने उन्हें इस प्रकार चेतावनी दी, क्यों आप लोग शहरपनाह के पास रात बिताते हैं? यदि आप दोबारा यह करते पाए जाएंगे तो मुझे आप पर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस चेतावनी के बाद वे शब्बात पर यरूशलेम कभी नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आदेश दिया कि शब्बात को पवित्र करने के उद्देश्य से वे अपने आप को शुद्ध कर द्वारपाल के समान आया करें। मेरे परमेश्वर, इस भले काम के लिए भी आप मुझे याद रखिए और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर अपनी दया हमेशा बनाए रखिए। उन्हीं दिनों में मेरा ध्यान इस सच्चाई की ओर भी गया कि यहूदियों ने अशदोद, अमोन और मोआब की स्त्रियों से विवाह किया हुआ था। उनकी संतान के विषय में सच्चाई यह है कि उनकी संतान के आधे लोग अशदोद की भाषा बोलते हैं। उनमें से कोई भी यहूदिया की भाषा में बातचीत कर ही नहीं सकता, बल्कि वे सिर्फ अपने ही लोगों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने उनसे बहस की, उन्हें धिक्कारा। उनमें से कुछ पर तो मैंने हाथ भी छोड़ दिया और कुछ के बाल नोचे। तब मैंने उन्हें परमेश्वर की शपथ दी, तुम उनके पुत्रों को अपनी पुत्रियां विवाह के लिए नहीं दोगे और ना उनकी पुत्रियों को अपने पुत्रों के लिए या खुद अपने विवाह के लिए लोगे। क्या इज़राइल के राजा शलोमोन ने इन्हीं विषयों में पाप नहीं किया था? इतना होने पर भी अनेकों देशों में उनके समान राजा कोई ना था। उन पर उनके परमेश्वर का प्रेम स्थिर था और परमेश्वर ने उन्हें सारे इज़राइल पर राजा ठहरा दिया। फिर भी उन विदेशी स्त्रियों ने उन्हें तक पाप करने के लिए फेर दिया था। तब क्या यह सही होगा कि हम आपसे सहमत होकर यह बड़ी बुराई करे और विदेशी स्त्रियों से विवाह करने के द्वारा अपने परमेश्वर के विरुद्ध विश्वासघात करें? यहां तक कि महापुरोहित एलियाशिब के पुत्रों में से एक योयादा होरोनी के सनबल्लत का दामाद था, मैंने उसे वहां से निकाल दिया। मेरे परमेश्वर, आप इन्हें याद रखिए, क्योंकि इन्होंने पुरोहित के पद को और पुरोहित की और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उन्हें उन सभी से शुद्ध कर दिया जो कुछ विदेशी था। मैंने पुरोहितों और लेवियों के लिए उनके कामों को ठहरा भी दिया, हर एक के लिए निश्चित काम। मैंने ठहराए गए अफसरों के लिए लकड़ी और पहले फलों को देने का भी प्रबंध कर दिया। मेरे परमेश्वर, मेरी भलाई के लिए मुझे याद रखिए।